नमस्कार भारत, तारीख 23 अगस्त दिन रविवार, मैं हूं विनीत खरे। पाकिस्तान ने कहा भारतीय शर्तों के कारण प्रस्तावित बातचीत संभव नहीं। भारत ने पाकिस्तानी फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण।
मुझे लगता है भारत का पक्ष बिल्कुल आस्था और सही था। पाकिस्तान को ये भारत का पक्ष था, वो मानना चाहिए था।
हिमालय के व्याग्रा के नाम से भी जाने वाले यारसा गुम्बू पर सुनिएगा खास रिपोर्ट।
प्राइस से जो ज्यादा है वो एफ्रोडाइसिक होने की वजह से, जो एक तरह से अभी तक तो मैं इसको कहूंगा ये मिथकी है।
साथ में अखबारों की सुर्खियां और खेल की खबरें भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच आज होने वाली शांति वार्ता रद्द हो गई है। पाकिस्तानी सरकार ने वार्ता रद्द करते हुए कहा कि भारत की शर्तों पर वार्ता करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इससे पहले शनिवार को भारत ने कहा था कि यदि पाकिस्तानी सुरक्षा सलाहकार कश्मीरी अलगाववादियों से मिलने पर अड़े रहते हैं तो वार्ता नहीं हो सकेगी। भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पिछले महीने शांति वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हुए थे। एक दिन में चलाए गए सबसे बड़े बचाव अभियानों में से एक में लीबिया के तट से भीड़ से भरी नौकाओं से करीब 3,000 अप्रवासियों को बचाया गया है। इतालवी कोस्ट गार्ड ने 20 से ज्यादा नौकाओं से आपात संदेश मिलने के बाद बचाव अभियान का समन्वय किया। बचाए गए लोगों में से 900 लकड़ी की दो नौकाओं पर सवार थे जिनके डूबने का खतरा था, जबकि सैकड़ों लोग डिंगियों पर सवार थे। बचाव अभियान के दौरान किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इस साल समुद्र के रास्ते यूरोप पहुंचने की कोशिशों में अब तक 2,000 से ज्यादा अप्रवासियों की मौत हो गई है। अफगान पुलिस के मुताबिक एक आत्मघाती हमलावर ने काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जाने वाले मुख्य मार्ग पर नेटो के वाहनों के काफिले को निशाना बनाया। इस हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए हैं और 60 से ज्यादा घायल हैं। नेटो के मुताबिक उसके यहां ठेके पर काम करने वाले 3 कर्मचारी भी मारे गए हैं। तालिबान ने काबुल के राजनयिक इलाके में एक अस्पताल के बाहर हुए इस हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है। एक चश्मदीद ने हमले के हाल को कुछ यूं बयां किया। मैंने जब धमाके की आवाज़ सुनी तो मैं घटनास्थल की ओर दौड़ा। ये विदेशी सैन्य बलों का काफिला था। हमलावर ने शिनोजादा अस्पताल के बाहर एक बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बनाया था। बहुत से नागरिक मारे गए और विदेशी वाहनों में फंसे थे। लेबनान की राजधानी बेरूत में गंदगी के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस, रबड़ की गोलियों और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। इसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर प्लास्टिक की बोतलें फेंकी। रेड क्रॉस के मुताबिक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 8 लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनों का आयोजन कई समूहों ने मिलकर किया था। ब्रितानी विदेश मंत्री फिलिप हेमंड आज तेहरान पहुंचकर ब्रितानी दूतावास को फिर से शुरू करेंगे। 2011 में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद तेहरान में ब्रितानी दूतावास बंद कर दिया गया था। विदेश मंत्री ईरान में ब्रिटेन के नए राजदूत अजय शर्मा और ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में एक समारोह में भी शामिल होंगे। इसी के साथ लंदन में ईरानी दूतावास भी आज फिर से शुरू हो जाएगा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के अधिकारी सीमा पर बरकरार तनाव को खत्म करने के लिए शनिवार देर रात तक शांति वार्ता में जुटे रहे। आज भी दूसरे दौर की वार्ता जारी रहेगी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में नमस्कार भारत, आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं, मैं हूं विनीत खरे। भारत और पाकिस्तान के बीच चरम पंथ को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बातचीत रद्द हो गई है। पाकिस्तान का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच ये जो बातचीत है वो भारतीय शर्तों के आधार पर नहीं हो सकती। उधर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट करके पाकिस्तान के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ यही दोहराया था कि पाकिस्तान शिमला और ऊफा समझौते की विचारधारा का सम्मान करे, जिसके लिए वो पहले से ही प्रतिबद्ध था। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि अगर पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज कश्मीरी अलगाववादियों से मिलते हैं तो बातचीत नहीं हो सकती। उन्होंने साफ किया था कि इस प्रस्तावित बातचीत का मकसद चरमपंथ पर बात करना था और कश्मीर का मुद्दा बातचीत के एजेंडे में नहीं था। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की नई दिल्ली में होने वाली बैठक दोनों देशों की तरफ से मीटिंग के एजेंडे की अपने अंदाज में की जा रही व्याख्या में उलझ गई। आज के लिए प्रस्तावित इस मीटिंग को लेकर लगातार संशय बना हुआ था। शनिवार की शाम भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मीटिंग को लेकर भारत का रुख स्पष्ट कर दिया।
मेरा दो वाक्यों में संदेश है उनको। पहली चीज, शिमला समझौते की स्पिरिट में हुर्रियत को या किसी भी अन्य पार्टी को आप तीसरा पक्ष मत बनाइए। दूसरा, उफा की स्पिरिट का सम्मान करते हुए आप बातचीत का दायरा आतंकवाद से ज्यादा मत बढ़ाइए और जरूर आइए, हम आपके स्वागत को तैयार हैं। आज की रात ही है सिर्फ जवाब देने के लिए।
सुषमा स्वराज ने जो डेडलाइन तय की थी उसके पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी बातचीत का मुख्य उद्देश्य तनाव घटाना और विश्वास बहाल करना है, जो सामान्य स्थिति की तरफ बढ़ने का पहला कदम है। अगर NSA स्तर की बातचीत का इकलौता उद्देश्य सिर्फ चरमपंथ पर बातचीत है तो शांति की संभावना बेहतर करने के बजाय इससे आरोप प्रत्यारोप को बढ़ावा मिलेगा और माहौल अधिक खराब होगा। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान दोहराता है कि भारत की ओर से पहले से तय शर्तों के आधार पर प्रस्तावित NSA स्तर की बातचीत नहीं हो सकती। इसके पहले शुक्रवार को ही भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि एक तरफा तरीके से नई शर्तें लगाना और तय हुए एजेंडे को बिगाड़ना आगे बढ़ने का आधार नहीं हो सकता। इसके बाद शनिवार को पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि वो बिना किसी पूर्व शर्त के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की वार्ता के लिए नई दिल्ली जाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, सभी आउटस्टैंडिंग मुद्दों पर बातचीत का मतलब ही है कि कश्मीर उसमें शामिल है।
On my part, I'm still prepared to go to New Delhi for NSA talks without any preconditions. जाहिर है कि हमारा तो क्लियर था कि ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज क्या दिया तो कश्मीर शामिल है। अब इंडिया उसको इंप्लीमेंट कर रहा है क्योंकि इंक्लूडिंग J&K नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि कोई पॉलिसी में तब्दीली आई है। लेकिन जैसे मैंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि इसमें कोई बात आप मेरे ख्याल है जो जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनसे पूछ लें कि कौन सा सबसे आउटस्टैंडिंग इशू इंपॉर्टेंट है एवरीबॉडी से इट इज कश्मीर। तो इसमें मेरा तो ख्याल है हमारी तरफ से इंडिया कोशिश कर रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट करने की और उसको मिसइंटरप्रेट करने।
उन्होंने हुर्रियत नेताओं से प्रस्तावित मुलाकात पर भारत की आपत्ति को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि वो NSA मीटिंग में पाकिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की दखलंदाजी के सबूत से जुड़ा डॉजियर भी सौंपेंगे। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसका भी जवाब दिया,
अगर वो यहाँ आकर के बात करते तो नावेद की तस्वीर दी जाती ना, वो डॉजियर की बात कर रहे हैं, वो तो क्या कागज देंगे, हम तो जिंदा सबूत है हमारे पास, हम तो जिंदा आदमी खड़ा कर देंगे उनके सामने कि ये देखिए ये आपका आतंकवादी है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बातचीत की टेबल पर आने के पहले ही दोनों देशों के रुख से साफ था कि वार्ता जारी रखने के लिए वो अपने एजेंडे में बदलाव नहीं लाएंगे। ऐसी सूरत में बातचीत होना लगभग नामुमकिन ही था।
ये थे वात्सल्य राय, और वात्सल्य ने भारतीय पक्ष समझने के लिए पूर्व डिप्लोमेट विवेक काटजू से बात की और उनसे पूछा कि उफा में सहमति के बाद दोनों देश सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग के लिए लचीला रुख दिखाने को तैयार आखिर क्यों नहीं हुए।
मुझे लगता है भारत का पक्ष बिल्कुल साफ था और सही था, और पाकिस्तान को ये जो भारत का पक्ष था वो मानना चाहिए था, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि केवल आतंकवाद पे बात हो, क्योंकि नहीं तो फोकस आता कि पाकिस्तान आतंकी देश है, पाकिस्तान आतंक अपने पड़ोस में खासतौर भारत में आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है। इसलिए वो चाहते थे कि और भी चर्चा हो, और विषयों पे चर्चा हो, जैसे कि जम्मू कश्मीर के मसले पर आगे बातचीत कैसे हो और जो मसले हैं उन पे कैसे बातचीत हो। लेकिन उफा जॉइंट स्टेटमेंट जो संयुक्त बयान था उसमें साफ लिखा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जब मिलेंगे, और ये दोनों प्रधानमंत्री ने तय किया था उनके आदेश पर था कि जब वो मिलेंगे तो केवल और केवल बातचीत आतंकवाद पर होगी। तो पाकिस्तान का कोई हक नहीं था कि बातचीत का दायरा बढ़ाए। दूसरा, हुर्रियत का जहां मसला है, दुनिया में किसी कोई भी देश ये इजाजत नहीं देता कि कोई बाहर की ताकत आए या बाहर का देश आकर उसकी सरजमी पे उसके अलगाववादी तत्वों से बात करे। और मोदी सरकार ने बस इतना कहा था कि भाई ये जो अंतर्राष्ट्रीय दस्तूर है उसको आप माने, इसके पहले भारत सरकार की जो भी नीति,
यानी उफा में दोनों प्रधानमंत्रियों ने जितना आगे बढ़ने का फैसला किया, अब उसी स्थिति में दोनों देश दोबारा पहुंच गए, यानी डायलॉग किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ रहा।
नहीं नहीं, ये क्यों आप कह रहे हैं? जिस दिन पाकिस्तान अब ये महसूस करने लगेगा, उसको जब ये एहसास हो जाएगा, जब उसके जो आजकल तेवर बहुत चढ़े हुए हैं, जब वो तेवर उतरेंगे, जब थोड़ा शांति में वो सोचेंगे, तो ये मानेंगे वो कि भारत का पक्ष सही है, उसको मान लेना चाहिए, और फिर बातचीत के दरवाजे खुले हैं उफा जॉइंट स्टेटमेंट के तहत।
तो आगे बढ़ने की अब क्या ऐसे में सूरत होगी, क्योंकि भारत
ये तो अब पाकिस्तान, ये सूरत वही होगी कि पाकिस्तान जिस दिन मान जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस का पालन करना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में ये भी है कि जो दस्तावेज है उसमें, जो संयुक्त दस्तावेज में जो लिखा है उसका पालन करना चाहिए, उस दिन बातचीत होगी।
लेकिन भारत का, जिस तरह से भारत ने अपना रुख जो कड़ा किया, वो शुक्रवार को पहले भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से एक बयान आया, उसके बाद विदेश मंत्री ने अपना रुख स्पष्ट किया, तो ये स्पष्टता क्या पहले नहीं थी?
नहीं, देखिए, ऐसा लगता है मुझे कि पहले एक रेखा खींच दी गई थी, उसके बाद भारत सरकार ने कुछ जरा उसमें ढील दी, जो मुझे लगता है गलत था। लेकिन अब जब भारत सरकार ने इस वार्ता के संदर्भ में वो रेखाएं की याद दिलाई पाकिस्तान को, दोनों बातचीत किस विषय पर होगी और हुर्रियत के मसले पर, तो पाकिस्तान को उसको कबूल करना चाहिए था, क्योंकि यही अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है।
मौजूदा जो दोनों देश के रिश्ते हैं, उन्हें आप कहाँ देखते हैं, किस स्थिति में देखते हैं, तो आप क्या कहेंगे?
ये तो साफ जाहिर है इस वक्त किस सूरत में है, और ये भी साफ जाहिर है कि किस देश की वजह से।
भारत का पक्ष बता रहे थे पूर्व राजनयिक विवेक कार्ड, जो हमारे साथ इस्लामाबाद से हमारे साथी हारून रशीद भी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। हारून, मैं आपके पास बस एक मिनट में आता हूं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय अखबार क्या कह रहे हैं आज जो वार्ता रद्द हुई है। दिलनवाज पाशा स्टूडियो में
जी। दैनिक जागरण लिखता है बातचीत से भागा पाकिस्तान, लगभग ऐसा ही शीर्षक लगाया है अमर उजाला ने, लिखा है वार्ता से पीछे हटा पाकिस्तान। दैनिक भास्कर लिखता है बातों से नहीं मानता पाकिस्तान, और हिंदुस्तान का शीर्षक है पाकिस्तान ने भारत से बात तोड़ी। वहीं द इंडियन एक्सप्रेस लिखता है शब्द युद्ध के बाद दोनों देशों ने वार्ता न करने का फैसला लिया, और द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है पाकिस्तान ने फिर रोना रोया। तो लगभग सभी अखबारों में पाकिस्तान जिम्मेदार ठहराया गया है वार्ता तोड़ने के लिए।
हारून, आपने सुना, एक फ्लेवर आपको भी मिला होगा वहां इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की मीडिया में क्या चर्चा हो रही है, पाकिस्तान के जो डिप्लोमैट्स हैं, राजनयिक हैं, वो क्या कह रहे हैं?
देखें, जिस तरह की बातें इंडिया के मीडिया में हो रही हैं, तकरीबन लगभग इसी तरह की हेडलाइंस पाकिस्तानी मीडिया में भी लगाई गई हैं। यहाँ एक्सप्रेस मेरे सामने है, उर्दू अखबार है, उसकी हेडलाइन है कि माइनस कश्मीर की शर्त पर सरताज अजीज का दिल्ली का दौरा मंसूख। दूसरा, इन्होंने एडिटोरियल भी लिखा है जिसमें यही बात कर रहे हैं कि ये जो दिल्ली में मुलाकात होनी थी वो बातचीत थी, मुजाकरात नहीं थी। और अमेरिका जैसे देश को, जिसने पहले भी इंडिया पर दबाव डाला था, मुज़ाकरात पर उसको आमादा किया था, उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। जहां तक यहां पर डिप्लोमेट्स और उनकी बात है, तो वो यही कह रहे हैं कि भारत का ये मौकिफ या ये स्टांस के कश्मीरी नेताओं के साथ मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि वो फरीक नहीं है। तो उनका ये कहना है कि कश्मीर ही असल मुद्दा है, और कश्मीरी जो हैं वही तो असल फरीक हैं जिनका ये मसला है, जिस पर इन दोनों देशों ने बैठ के बात करनी थी। तो लगता यही है कि यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि जो बातचीत या मुलाकात से पहले कड़ा इन्होंने दोनों देशों ने स्टैंस लिया, और उफा स्टेटमेंट और मुश्तरका बयान को जो अपने अपने जाविये से उसको देखने की कोशिश की, उसकी वजह से ये बातचीत जो है खत्म हो गई है और आज नहीं हो रही।
एक सवाल और आपसे हारून, कल जिस तरह से जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे दोनों तरफ से, कोशिश ऐसा लग रही थी कि बातचीत अगर रद्द हो तो जिम्मेदारी उन पर ना आए, जिम्मेदारी दूसरे जो दूसरा देश है उस पर आए, कुछ साफ हो पाया है कि आगे का रास्ता, या फिर वहां पर जो पॉलिटिशियंस हैं, डिप्लोमैट्स, वो क्या कह रहे हैं कि आगे का रास्ता फिर क्या हो, बातचीत फिर बढ़े, कैसे बढ़े, क्योंकि बातचीत के बिना तो कोई भी हल संभव नहीं है?
जी बिल्कुल, यहाँ पर तो इस तरह की मिसालें भी दी जा रही थी कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जिस तरह किसी मियां बीवी के दरमियान तलाक के इशू पे दोनों साइड्स के जो वकील हैं वो बात पे राजी हो जाते हैं कि सेपरेशन होगी, लेकिन इसमें पहल कौन करेगा और कौन पहले साइन करेगा इस पे दोनों के दरमियान इख्तलाफ था और शायद उसी वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही थी। आगे की बात जहां तक है तो मुश्किल लग रहा है इस वक्त इन हालात में, जब कशीदगी भी है, टेंशन भी है और सिर्फ मिलने मिलाने पर भी इतना इशू और इतना विवाद उठ खड़ा हुआ है, तो मुश्किल ही यहाँ पर देखा जा रहा है कि शायद इसमें बात कुछ आगे बढ़ सके। और एक ये भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि शायद कूफा में कुछ इस तरह का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर ये आरोप लगा था कि शायद उन्होंने काफी नरम मौके पे इख्तियार किया था और पहली मर्तबा दोनों देशों के दरमियान मुश्तरक बयान में कश्मीर का नाम नहीं आया था। तो अब जाके पाकिस्तान ने उसका मदावा करने की कोशिश की है और एक टफ स्टांस लिया है कि मुज़ाकरात जो भी हों, जिस तरह के भी होंगे, उसमें कश्मीर पे बात जरूर होगी। तो उस वजह से भी ये जो सिलसिला है अब लगता नहीं है कि मुस्तकबिल करीब में कोई जल्द मुलाकात के आसार नजर आ रहे हैं।
इस्लामाबाद से हारून रशीद, बहुत शुक्रिया आपका। और दिलमाज पाशा इस वक्त स्टूडियो में भी मौजूद हैं। अभी भी दिलमाज, इसके अलावा और क्या खबरें हैं अखबार में?
जी, आज के अखबारों में एक और खबर है दाऊद इब्राहिम से संबंधित। कई अखबार कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची में हैं। दैनिक जागरण सीधे सीधे लिखता है कराची में है दाऊद, तो वहीं नवभारत टाइम्स ने दाऊद इब्राहिम की बीवी से बातचीत का हवाला देते हुए लिखा है, मैं कराची से दाऊद की बीवी बोल रही हूँ। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर का जिक्र करना चाहूंगा जिसके मुताबिक भारत के शहरों में बच्चे 14 साल की उम्र में पहली बार सेक्स कर लेते हैं। 8 मेट्रो शहरों में 13 साल से 19 साल के बच्चों पर हुए शोध के बाद ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। द हिंदू की एक खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने कहा है कि जो ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं लोग, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, ऐसी सिफारिश की है सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने। ये द हिंदू की खबर है। और हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी सैलानियों से अपराध के मामले में भारत में दिल्ली सबसे आगे है। और दिल्ली की एक और खबर, कमांडो सुरेंद्र जिनको आम आदमी पार्टी के विधायक हैं गिरफ्तार किया गया था, उन्हें कल जमानत मिल गई।
शुक्रिया आपका दिलनवाज पाशा। बीबीसी हिंदी सेवा में आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, मैं हूं विनीत खरे। हिमालय के इलाके में मिलने वाली कीड़ा जड़ी यानी यारसा गुम्बू ने यहाँ के समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला है। खासकर चीन में और उसके अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यारसा गुम्बू का बड़ा बाजार है। ये जड़ी बेहद महंगी बिकती है। ऐसे में हिमालय का समाज अपनी पारंपरिक आजीविका के बजाय अब कीड़ा जड़ी के दोहन की तरफ ज्यादा आकर्षित हुआ है। एक विशेष रिपोर्ट के साथ रोहित जोशी।
आप लोग कहाँ से आ रहे हैं?
ब्यास घाटी में बिंदाकोटी की 4444 सीढ़ियों वाली चढ़ाई से ठीक पहले लखनपुर के छोटे से ढाबे में इस परिवार से मेरी मुलाकात हुई।
बर्फ गल गई है?
हिमालयी बुग्यालों से कीड़ा जड़ी यानी यारसा गुम्बू जुटाकर लौट रहा ये परिवार पांखुल में अपने घर पहुंचने की जल्दबाजी में था। भारत, नेपाल और चीन की सीमा बनाने वाले इस इलाके के अधिकतर गांव इन दिनों खाली हैं। परिवार के परिवार इन दिनों बुग्यालों में यानी कि बर्फीले हिमालयी पहाड़ों से लगे हुए घास के बड़े बड़े मैदानों में तंबू और खाने की सामग्री लेकर यारसा गुम्बू जुटाने गए हुए हैं। यारसा गुम्बू तिब्बती भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है गर्मियों के दिनों में कीड़ा और सर्दियों के दिनों में जड़ी यानी कीड़ा जड़ी। गर्मियों के दिनों में हिमालयी बुग्यालों में पाए जाने वाले एक पतंगे के लार्वा के भीतर घास फूस खाने से एक कवक भी चला जाता है। बर्फ पड़ने से ठीक पहले ये लार्वा जमीन के अंदर शीत निद्रा में चला जाता है और यहाँ ये कवक इसके भीतर जीवित अवस्था में आकर एक पौधे के रूप में ऊपर उगाता है। यारसा गुम्बू का अध्ययन कर रहे कुमाऊं विश्वविद्यालय में जंतु विज्ञान विभाग में प्रोफेसर सीएस नेगी इस प्रक्रिया को कुछ ऐसे बताते हैं।
यारसा गुम्बू जो है बेसिकली एक जो है फंगस स्पीसीज है, कवक है, जो इंसेक्ट को इन्फेक्ट करता है, खासकर मौत को। जो होस्ट इंसेक्ट है मौत, उसके अभी तक जो है यहाँ पे सही तरह से आइडेंटिफिकेशन उसका नहीं हुआ है, जिसपे हम लोग अभी काम कर रहे हैं कि वो हिपेलस का कौन सा स्पीसीज है। अब हिपेलस को हम लोग थीटा रूट्स भी कहते हैं, अब एंटायरली न्यू जीनस हो गया वो। तो एक जो है ये जो फंगस है जो स्पोर फॉर्म में, ये क्या करता है कि जो लार्वा है जब वो मोल्ड करता है, फर्स्ट इंस्टार, सेकंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार, हमने ये देखा है कि जब फोर्थ एंड फिफ्थ है, दैट इज़ द टाइम जब उसमें स्पोर जर्मिनेट करेगा और वो हाइफा बनाएगा और उसके बॉडी को पेनिट्रेट करेगा, इंटेगुमेंट को पेनिट्रेट करेगा और उसके बाद लार्वा जो है उस समय जीवित अवस्था में होता है, और जैसे विंटर सीजन आता है तो उस वक्त क्या करता है कि वो जो है ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर जो है मूव करता है डायपॉज कंडीशन में जाने के लिए, और इस दौरान जो है वो जो हाइफा अंदर है उसका जो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो गया है वो उसके अंदर ग्रो करता रहता है। नेक्स्ट जब समर सीजन आता है, जब जो स्नो कवर जब मेल्ट होता है, उस दौरान जो है जो माइसिलिया है फंगस का, वो जो है उसका फ्रूटिंग बॉडी जिसको हम लोग स्पोरोकार्प कहते हैं, नॉर्मली उसके जो माउथ पार्ट है उससे बाहर निकलता है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यारसा गुम्बू की कीमत तकरीबन 60 से 80 लाख रुपए प्रति किलो है, और हिमालय के इन दूर दराज गांवों में भी गुणवत्ता के आधार पर इसका विदोहन करने वाले ग्रामीणों को 12 लाख से लेकर 18 लाख रुपया प्रति किलो तक मिल जाता है। पांगला गांव के जमन सिंह से मेरी मुलाकात नाभिडांग में हुई। वे बताते हैं,
एक किलो में 500 का बिकता है, असल 12 लाख रुपए किलो है, एक किलो में 4000 के पीस जाते हैं। जैसे आप ठेकेदार हुए, आप हांगकांग या विदेश से कहीं से आए, आप दिल्ली में बैठे या काठमांडू में बैठे, आपके किटकंडार ये हुए, इनके किटकंडार ये हुए, इनके किटकंडार मैं हुआ, अब मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं लोकल आदमी, मैं जाऊँगा भाई, मैं आपको मैं इतना दूंगा, तो वो आप कितना खा रहे हो, ये साहब कितना खा रहे, ये साहब कितना खा रहे, वो तो हमको मालूम है।
इस कीड़ा जड़ी के इतना महंगा होने का आखिर क्या कारण है? दरअसल यारसा गुम्बू को हिमालयी व्याग्रा भी कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये मर्दानगी बढ़ाने वाली दवा के बतौर इस्तेमाल होती है, लेकिन प्रोफेसर सीएस नेगी बताते हैं कि ये बात अभी वैज्ञानिक तौर पर साबित नहीं हुई है। हालांकि इसके अलावा भी शक्तिवर्धक और अन्य दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है।
जिस वजह से इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है और जिस वजह से इसकी मार्केट जो प्राइस है जो ज्यादा है, वो एफ्रोडियासियक होने की वजह से, जो एक तरह से अभी तक तो मैं इसको कहूंगा ये मिथकी है, क्योंकि साइंटिफिकली कोई प्रूवन नहीं है कि ये एक तरह से जो है ये एफ्रोडियासियक की तरह से, ये मर्दांगनी बढ़ाने वाली जैसे दवा की तरह से ये काम करता है, उसके प्रत्यक्ष साक्ष्य हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है।
प्रोफेसर नेगी बताते हैं कि यारसा गुम्बू 3200 मीटर से लेकर 4700 मीटर तक की ऊंचाई वाले इलाकों में मिल रहा है, लेकिन तिब्बत के पठार में ये 5200 मीटर की ऊंचाई पर भी मिला है। सुरेश रायपा भी कीड़ा जड़ी जुटाने पिछले 15 सालों से बुग्यालों में जाया करते हैं। वे बताते हैं,
तो क्या सरकार भी खरीदती है?
सरकार भी आती है।
तो सरकार के रेट और ठेकेदारों के रेट में कितना अंतर है?
सरकार को तो रेट कम ही होता है वैसे।
इस बार कैसा
सीजन तो इस बार तो वैसे कीड़ा मिल नहीं रहा है उतना,
नहीं मिल रहा
उतना बर्फ के कारण।
जब से यारसा गुम्बू के बारे में इस इलाके के लोगों को पता चला है, सीमांत के इस इलाके के समाज और अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ा है। कम मेहनत करके एक मुश्त इतना पैसा मिलने से पूरे इलाके का रुझान अपनी पारंपरिक आजीविका से हटकर यारसा गुम्बू के विदोहन की तरफ हो गया है। गुंजी गांव की ग्राम प्रधान अर्चना गुंजियाल बताती हैं,
कीड़ा जड़ी से सबसे ज्यादा मतलब आदमी यही होता है, जहां पैसा ज्यादा कमा रहा है आदमी, इससे खेती प्रभावित हो गई। जवान लड़के लड़कियां सब जंगलों में जाके कुछ भी नहीं दो, एक आदमी 1 लाख रुपए भी कमा रहा है सालाना, तो वही अच्छा ठहरा, ये 1 लाख रुपए थोड़ी खेतों से मिलता है, इसलिए खेती छोड़ ही दिया है।
ग्राम पंचायतों के अपने जंगलों में आने वाले बुग्यालों से कीड़ा जड़ी का विदोहन कानूनी तौर पर वैध है, लेकिन सार्वजनिक और संरक्षित वनों में भी ग्रामीण यारसा गुम्बू के विदोहन के लिए जाते हैं। पहाड़ के समाज और इतिहास के जानकार प्रोफेसर शेखर पाठक बताते हैं कि कीड़ा जड़ी से इस इलाके में समृद्धि तो आई है, लेकिन इसका अपराधीकरण भी बढ़ा है।
जहाँ ओपन स्पेस है, रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ एक तरीके से वो ग्रामीण अलग अलग ग्रामीण समाज के लोगों के लिए वह द्वंद्व का, प्रतियोगिता का और कभी कभी मल्लयुद्ध का भी एक तरीके से कारक बनने लगा है, और जिसके कारण एक तरीके की अशांति और एक तरीके का अपराधीकरण भी कुछ लोग कहते हैं कि इन इलाकों में होने लगा है।
पिछले सालों में यारसा गुम्बू के विदोहन के बहुत ज्यादा बढ़ने से इसकी प्रजाति पर खतरा मंडराने लगा है, और साथ ही अल्पाइन क्षेत्रों में मानवीय दखल बढ़ने से वहां की जैव विविधता पर भी असर पड़ रहा है। बीबीसी के लिए ब्यास घाटी से रोहित जोशी।
इतालवी तटरक्षकों के मुताबिक लीबिया के तट पर नाव में फंसे 3000 से ज्यादा अप्रवासियों को बचाया गया है। ये बचाव अभियान अब तक के सबसे बड़े बचाव अभियानों में से एक है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट के साथ दिलनवाज पाशा।
समाचार एजेंसी एफपी के मुताबिक 20 से ज्यादा नावों ने आपात संदेश भेजे थे। इतालवी नौसेना के मुताबिक बचाव अभियान में नौसेना के 2 जहाज भी लगे थे। सिग्ला फुलगोसी जहाज ने 507 लोगों को बचाया, जबकि वेगा जहाज ने 432 लोगों की जान बचाई। इसके अलावा अन्य इतालवी जहाज और नॉर्वे की सेना का आपूर्ति जहाज सीएम पायलट भी बचाव अभियान में जुटा रहा। नॉर्वे के जहाज ने 966 अप्रवासियों को बचाया। समाज सेवी समूह डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने की नौका ने भी 311 लोगों को बचाया है, जिनमें एक नवजात भी शामिल है। तटरक्षकों के मुताबिक गश्ती नौकाओं ने शुक्रवार रात से शनिवार सुबह के बीच 1000 से ज्यादा लोगों को बचाया है। इस साल अब तक नावों से यूरोप पहुंचने की कोशिश में 2000 से ज्यादा अप्रवासी डूबकर मर चुके हैं। लीबिया से इटली का रास्ता यूरोप में घुसने की कोशिश करने वालों के लिए सबसे व्यस्त रास्तों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस साल अब तक 264,500 अप्रवासी यूरोप पहुंचे हैं। इनमें से 104,000 इटली के रास्ते यूरोप में घुसे हैं, जबकि 160,000 ग्रीस के रास्ते यूरोप पहुंचे हैं।
शुक्रिया दिलनवाज। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन कल भारत ने अपना शिकंजा कस दिया। कल भारत ने अपनी दूसरी पारी में एक विकेट खोकर 70 रन बना लिए। स्टंप के समय मुरली विजय 39 और अजिंक्य रहाणे 28 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि सलामी बल्लेबाज केएल राहुल केवल 2 रन बनाकर धमिका प्रसाद की गेंद पर बोल्ड हो गए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 306 रनों पर समाप्त हुई। श्रीलंका के कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने बेहद दबाव के पलों में शानदार शतकीय पारी खेलते हुए 102 रन बनाए। उनके अलावा लाहिरू थिरीमाने ने 62, कौशल सिल्वा ने 51 और अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे कुमार संगकारा ने 32 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर भारत को 87 रनों की बढ़त मिली। इस बढ़त को दिलाने में लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 43 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। उनके जोड़ीदार आर अश्विन ने 76 रन देकर 2 और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने भी 68 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। कल खेल समाप्त होने के बाद अमित मिश्रा ने भारतीय टीम की रणनीति की समीक्षा करते हुए कहा,
प्लान था हमारा कि अगर विकेट ना भी मिले तो हमें रन नहीं देने जाते। हमें पता था कि जब भी एक विकेट या दो विकेट मिलेगा तो हम रन थ्रू कर देंगे, और वही हुआ। और नो डाउट कि अंजला ने अच्छी बैटिंग करी, 100 बनाया, और लेकिन उसके बाद जो हमने कमबैक किया है, हमारे सभी बॉलर ने अच्छी बॉल डाली है और उनके ऊपर हमेशा प्रेशर बना के रखा।
अब भारत के पास 157 रनों की बढ़त है और उसके 9 विकेट बाकी हैं। वहीं ओवल में ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में मेजबान इंग्लैंड के सामने हार का खतरा पैदा कर दिया है। कल इंग्लैंड की पहली पारी 149 रन पर समाप्त हुई और 332 रन से पिछड़ने के बाद उसे फॉलो ऑन का सामना भी करना पड़ा। दूसरी पारी में भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जमने का मौका नहीं दिया। वो तो कप्तान एलिस्टर कुक ने 85 रन बनाकर पारी को संभाला, लेकिन कल खेल समाप्त होने से कुछ ही देर पहले वो स्टीव स्मिथ का शिकार बने। कल स्टंप के समय इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर 203 रन बनाए थे और पारी की हार से बचने के लिए उसे अभी भी 129 रनों की जरूरत है। उधर बीजिंग में कल से विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हुई, जहां पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 7वें हीट में जमैका के सुपरस्टार यूसेन बोल्ट ने 9.96 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया। 100 मीटर दौड़ का सेमीफाइनल और फाइनल आज होगा। इसी बीच पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक उम्मीदों के अनुरूप ग्रेट ब्रिटेन के मोहम्मद फराह ने अपने नाम किया।
ये थे आदेश कुमार गुप्त। और अब मुख्य समाचार।
भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच आज होने वाली शांति वार्ता रद्द हो गई है। एक दिन में चलाए गए सबसे बड़े बचाव अभियानों में से एक में लीबिया के तट से भीड़ से भरी नौकाओं से करीब 3,000 अप्रवासियों को बचाया गया है। अफगान पुलिस के मुताबिक काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जाने वाले मुख्य मार्ग पर नेटो के वाहनों के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में गंदगी के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ब्रितानी विदेश मंत्री फिलिप हेमंड आज तेहरान पहुंचकर ब्रितानी दूतावास को फिर से खोलेंगे। इसके साथ ही लंदन में ईरानी दूतावास भी फिर से खुल जाएगा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के अधिकारी सीमा पर बरकरार तनाव को खत्म करने के लिए शनिवार देर रात तक शांति वार्ता में जुटे रहे। अधिकारी रविवार को दूसरे दौर की वार्ता जारी रखने के लिए तैयार हो गए हैं। अमेरिका के एक चिड़ियाघर में एक पांडा ने बच्चे को जन्म दिया है। वाशिंगटन के स्मिथसोनियन नेशनल जू आने वाले लोगों के लिए ये पांडा आकर्षण का केंद्र रहता है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। स्टूडियो संभाला था दीपक शर्मा ने। मैं हूं विनीत खरे। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी एक घंटे बाद विश्व भारती में।